उनका क्वेश्चन ये है कि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के होने योग जो क्षायिक सम्यक दर्शन है, क्या वो बिना आत्मानुभूति के हो सकता है? कुछ चीजें अपने मन में पहले आगम के अनुसार क्लियर करना चाहिए। पहली चीज, चौथा गुण स्थान किसे कहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि नाम का चौथा गुण स्थान है। जिसने श्रावक के योग व्रत तो धारण नहीं किए हैं, लेकिन जिसे सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है। ये प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की पद्धति से चौथा गुण स्थान हो गया। क्या समझ में आया? जिसने श्रावक या मुनि के योग कोई व्रत धारण नहीं किए हैं, लेकिन जिसकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है, सात तत्वों पर श्रद्धा है, इतना और जोड़ लो, वो कौन है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। ये किस अनुयोग की किस पद्धति का है? तो ये प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की पद्धति है। द्रव्यानुयोग की पद्धति में कहेंगे कि जिसने व्रत नियम संयम तो कुछ भी नहीं लिए, लेकिन जिसे आपा पर का भेद विज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा के प्रति रुचि जागृत हो गई है, जिसे आत्मा में के प्रति श्रद्धान हो गया है, आत्म तत्व के प्रति श्रद्धान हो गया है, वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है। ये द्रव्यानि योग की पद्धति है। और करणानि योग की पद्धति क्या है? जिसने मिथ्यात्व संबंधी तीन और अनंतानुबंधी आदि चार ऐसी सात प्रकृतियों का अत्यंत क्षय कर दिया है, या कि उन्हें उपशमित कर दिया है, या इन प्रकृतियों में से छह का तो उपशम और क्षय एक साथ हुआ है, और एकमात्र सम्यक प्रकृति जिसके उदय में है वो क्षय उपशम सम्यक दृष्टि कहलाए। तीनों चौथे गुणस्थान वाले हैं। करणानि योग की पद्धति में गुणस्थान चौथा कब होता है? जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम हो, या क्षय हो, या कि क्षय उपशम हो, ठीक है, तब करणानि योग की पद्धति से कहा जाएगा कि चौथा गुणस्थान हो गया। बाकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा हो गई, ठीक है। अब सवाल ये है कि अविरत सम्यक दृष्टि ऐसी संज्ञा तो दी जा सकती है चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और द्रव्यानुयोग से, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान तो करणानुयोग के अनुसार ही बनेगा। अविरत सम्यक दृष्टि तो जिसके व्रत नहीं है लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है, जिसके व्रत नियम नहीं है लेकिन आपा पर का भेद विज्ञान है, आत्मा में रुचि है, आत्म तत्व का श्रद्धान है, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ठीक। ये जो है चतुर्थ गुण स्थान के लिए नहीं, ये तो सिर्फ अविरत सम्यक दृष्टि की परिभाषा है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले की, तो चौथे गुण स्थान में तो वो ही होगा जिसने की सात प्रकृतियों का उपशम क्षय या क्षयोपशम किया होगा, तो चौथा गुण स्थान बनेगा। अब देखना मजा, अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी चीज। चौथे गुण स्थान में होने वाले क्षायक सम्यक दर्शन, और वो कह रहे हैं कि आत्मानुभूति। आत्मानुभूति ये शब्द द्रव्यानि योग का है, और चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दर्शन ये करणानि योग की पद्धति है। अपन लोग दोनों चीजों को एक साथ मिला देते हैं और झगड़ा खड़ा हो जाता फौरन। अपने को आचार्यों ने समझाने के लिए, समझने के लिए चार पद्धतियां इसलिए अलग अलग लिखी हैं, और उन चारों को गड्ढमड्ढ कर दो तो चीज समझ में नहीं आती। द्रव्यानि योग की पद्धति में अगर आप कहोगे कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसको आत्मा की अनुभूति हुई क्या, कहेंगे हाँ, आत्मा के श्रद्धान को ही आत्मानुभूति कहेंगे, हो गया। द्रव्यानि योग की कथनी में सही है वो, क्या चीज, आत्मा का श्रद्धान होना ही आत्मानुभूति है, ये द्रव्यानि योग की पद्धति। करणानि योग कहता है कि ऐसे कैसे, जब तक आपके तीन चौकड़ी बैठी हैं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, शुद्ध आत्मा की अनुभूति का उपाय ही नहीं है, ये कर्णानि योग की पद्धति है, तो झगड़ा मत करो। अगर द्रव्यानि योग की पद्धति से चौथे गुण स्थान में आत्मा के श्रद्धान को आत्मानुभूति माना गया है तो आराम से उसको मानो, लेकिन ऊंचे वाले गुणस्थान में होने वाली अनुभूति को नीचे वाले गुणस्थान में खींच के लाओगे तो आएगी नहीं, विकल्प और होगा, संक्लेश होगा, बात क्लियर नहीं होगी। ये अपने को ध्यान में रखना, तब इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल सकता है। इसलिए जो चौथे गुणस्थान में आत्मा का श्रद्धान है उसे ही द्रव्यानि योग की पद्धति में आत्मानुभूति कहते हैं, लेकिन शुद्ध आत्मानुभूति ही वास्तव में आत्मानुभूति कहलाती है। अब यहां ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मानुभूति, आत्मानुभूति तो जैसी आत्मा की स्थिति है वैसी होगी, आत्मा में श्रद्धान तो हो गया है कि मेरी आत्मा ऐसे स्वभाव वाली है, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ऐसा आत्म तत्व पर श्रद्धान हो गया। अब उस आत्म तत्व के श्रद्धान से भीतर क्या भाव आता है, ये पंचेंद्री के विषय तो मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं है, इनमें मैं सुख और दुख मानता हूं, ये मेरा भ्रम है, ऐसा जो विचार चल रहा है वो निरंतर आत्मा की तरफ ले जाने वाला है कि नहीं। लेकिन अभी आत्मा में राग और द्वेष भरे पड़े हैं कि नहीं, तो आत्मा की अनुभूति कैसी होगी शुद्ध अवस्था की, कि जो राग द्वेष से युक्त आत्मा है उसकी, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि शुद्ध तो तब होगी जब उसमें से अनंतानुबंधी रूपी राग द्वेष चलो जावे, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान चला जावे, अकेला संजुलन। तो कुछ आचार्य कहते कि अकेला संजुलन रह जावे तो भी होगा, नहीं तो कुछ आचार्य तो कहते कि संजुलन कषाय भी चली जावे तब शुद्धात्मानुभूति होगी। ग्यारहवें गुण स्थान में जहां शुक्ल ध्यान है वहीं शुद्धात्मानुभूति है, फिर और ऊंची जगह ले जाके छोड़ते हैं कि जब कषाय समाप्त हो जाए, मोहनी कर्म दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी दोनों, अकेले दर्शन मोहनी के क्षय होने से आत्मानुभूति शुद्ध आत्मानुभूति का उल्लेख आचार्यों ने नहीं लिखा, मोह के अभाव में तो लिखा है लेकिन अकेले दर्शन मोह की बस इतना, ये टेक्निकल मामला है एक्चुअली, ये बड़ा बारीक मामला है। दर्शन मोहनी के अभाव होने पर आत्मानुभूति तो हो सकती लेकिन शुद्धात्मानुभूति नहीं हो। और आत्मानुभूति किस तरह की, श्रद्धान रूप। हां, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी हो, पानी के लिए तड़प रहा है, कहीं पानी दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, और कोई सामने से आता दिखाई पड़ता पूछता है कि पानी है क्या, अरे तुम इतने व्यथित हो रहे, अभी देखो हम अभी पी करके आ रहे, तुम 50 कदम और चलो और अभी पानी मिल जाएगा। अब उससे पूछो कि अब कैसी अनुभूति हो रही, अब जरा शांति है, पहले बहुत आकुलता थी, अब तो मिल जाए 50, वो बिल्कुल हमारा मित्र ही है, वो कह रहा 50 कदम पर है, कैसा लग रहा आप, प्यास बुझ गई क्या, बोलो बुझ गई क्या, पानी पी लिया, लेकिन कैसा लग रहा है, जैसे कि मिल गया। अब इसको आप क्या कहोगे, और एक व्यक्ति, अब वही व्यक्ति आगे जाके 50 कदम और सामने सरोवर देखता है अथाह जल से भरा हुआ, अरे वाह आनंद आ गया, अभी प्यास फिर भी नहीं बुझी, अभी तो सिर्फ मजा ले रहा है कि क्या बढ़िया आनंद, अब बस अब भी जो है हाथ वाथ धो करके, अब कोई आकुलता नहीं, अब हाथ वाथ धो करके बढ़िया से और पानी पीऊंगा, जब पानी पी लेगा तब प्यास बुझेगी। लेकिन प्यास कहां से बुझना शुरू हो गई, जहां से ये श्रद्धान हो गया कि अब मिल जाएगा 50 कदम, ऐसे ही आत्मा की रुचि जागृत हो जाती है कि मेरे आत्मा का स्वभाव ऐसा है, तो बड़ा शांति मिलना शुरू हो जाती। उस शांति को, उस आनंद को चाहे जो नाम दो भैया, लड़ो बनने क्या जो नाम देना सो दे लो, आचार्य भगवंतों ने जैसा दिया है वैसा दो तो और आनंद आएगा, और अपने मन का दोगे तो थोड़ा बाद में जाकर के गड़बड़ हो जाएगी, जब सिद्धांत आगे पढ़ोगे तो सिद्धांत से मेल नहीं खाएगा, अध्यात्म सिद्धांत से मेल खाना चाहिए। सिद्धांत की भाषा में जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में होते उसे शुद्धात्मानुभूति कहते हैं। ये दोनों टेक्निकल वर्ड है और दोनों सिनोनिम्स हैं। सिद्धांत की भाषा और आध्यात्म की भाषा के दोनों एकार्थवाची शब्द हैं, लेकिन हम इनको ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो हम कहीं से कहीं इनको लगा लेते हैं तो गड़बड़ में पड़ जाते हैं। भैया मैंने तो इतना ही समझ पाया है, इसके आगे भी आपने अगर समझाओ तो और देखिएगा।